आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने त्योहारों के दिनों में मुसाफिरों की सहूलतों और सफर से मुतालिक इंतजामात का जायजा लेने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा किया। झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए दाखिल की गई नामजदगियां वापस लेने के बाद अब कुल 1211 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। अक्टूबर के महीने में जीएसटी की वसूली अभी तक की सबसे ज्यादा वसूली के बाद दूसरे नंबर पर रही। ये वसूली 1.87 लाख करोड़ रुपए रही। हुकूमत ने बावकार नेशनल यूथ अवार्ड्स 2022-23 के लिए दरखास्तें तलब की हैं। दुनिया भर में गुजराती बिरादरी आज नया साल मना रही है और भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी मालविका बंसोड़ और आयुष शेट्टी जर्मनी में हेलो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने त्योहारों के सिलसिले के दौरान मुसाफिरों की सहूलतों और सफर से मुतालिक इंतजामात का जायजा लेने के लिए कल शाम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा किया। उन्होंने प्लेटफार्मों पर रेलगाड़ियों का इंतजार करते हुए मुसाफिरों से बातचीत की। कुछ मुसाफिरों ने बताया कि भीड़भाड़ से निपटने के मुनासिब इंतजामात की वजह से प्लेटफार्मों पर पहुंचने में कोई दुश्वारी नहीं हुई। जनरल वैष्णव ने रेलवे हिफाजती फोर्स आरपीएफ और रेल अफसरान की तरफ से किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। वजीर मौसूफ ने नामनिगारों से बात करते हुए खुशगवार सफर के लिए रेलवे अफसरान की तरफ से किए गए इकदामात को सराहा। जनाब वैष्णव ने स्टेशन पर नज्म व जब्त बरकरार रखने में तआवुन देने पर मुसाफिरों की भी सताइश की। जनाब वैष्णव के मुताबिक पिछले साल भारतीय रेलवेज ने दिवाली और छठ पूजा के दौरान 4,500 से ज्यादा रेलगाड़ियां चलाई थी। अलबत्ता इस साल इन खसूसी रेलगाड़ियों की तादाद बढ़ाकर 7,435 कर दी गई है। उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर तक इन खसूसी रेलगाड़ियों में 51 लाख लोगों ने सफर किया है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए शिमारी रेलवे के ताल्लुकात आम्मा के चीफ ऑफिसर हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा,
छठ के त्योहार को देखते हुए उत्तर रेलवे द्वारा आज की डेट में 68 ट्रेन चलाई जाएंगी या उत्तर रेलवे होकर गुजरेंगी। ये स्पेशल ट्रेन हैं। 2 नवंबर को 71 स्पेशल ट्रेन उत्तर रेलवे द्वारा चलाई जाएंगी। 52 रेगुलर ट्रेन चल रही हैं। उसके अलावा करीब करीब 22-23 स्पेशल ट्रेन चल रही हैं।
झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मैदान में कुल 1211 उम्मीदवार हैं। असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का कल आखिरी दिन था। 81 रुकनी असेंबली के लिए पोलिंग 2 मरहलों में होगी। पहले मरहले में 43 असेंबली हलकों के लिए वोटिंग 13 नवंबर को होगी। पहले मरहले में इंतखाबी मैदान में 683 उम्मीदवार हैं, जबकि कल पर्चे नामजदगी वापस लेने के बाद दूसरे मरहले में 528 उम्मीदवार हैं। दूसरे मरहले में 38 असेंबली हलकों के लिए पोलिंग 20 नवंबर को कराई जाएगी। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। सीनियर बीजेपी रहनुमा और मरकजी वजीर दाखला अमित शाह आज रांची का दौरा करेंगे। जनाब शाह बीजेपी रहनुमाओं के साथ झारखंड में इंतखाबी तैयारियों का जायजा लेंगे। जनाब शाह घाटशिला के धाल भूमगढ़ और हजारीबाग के बरकट्ठा में आज, जबकि चित्रा के सिमारा में कल इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। इस दौरान झारखंड में इंतखाबी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और बरसर इक्तदार INDIA इत्तेहाद और अपोजिशन NDA लोगों को अपनी जानिब रागिब करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। झारखंड इंतखाबात में बीजेपी के मुआविन इंचार्ज और आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि अगर बीजेपी इक्तदार में आई तो वो रियासत में शहरियों का कौमी रजिस्टर NRC नाफिज करेंगे।
पूरा जो झारखंड का JMM है, ये एक घुसपैठियों का सरकार है। ये अगर सरकार रिपीट होगा तो हम लोग का कोई सुरक्षा नहीं रहेगा, हमारा कोई समाज सुरक्षित नहीं रहेगा। ये सरकार हटाना झारखंड वासियों का जिम्मेदारी है।
दूसरी जानिब कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने बीजेपी पर आईन मुखालिफ होने का इल्जाम लगाया। जनाब गोपाल ने कहा कि उनकी पार्टी इस मामले को और बड़े पैमाने पर उठाएगी।
बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, देन बिल्कुल दैट इश्यू वी आर गोइंग टू रेज इट इन अ बिगर लेवल। आई थिंक द एटमॉस्फेयर इन झारखंड इज वेरी गुड, सो फॉर अस इंडिया अलायंस इज कंसर्न्ड, आवर गठबंधन विल विन।
झारखंड में असेंबली इंतखाबात दो मरहलों में होंगे। पहले मरहले में 13 नवंबर को जबकि दूसरे मरहले में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 4 नवंबर है। तफसील हमारे नामनिगार से।
महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के 288 हलकों के लिए 7066 उम्मीदवारों के पर्चे सही पाए गए हैं। नांदेड़ लोकसभा जिमनी इंतखाब के लिए जांच पड़ताल के बाद 22 उम्मीदवारों के पर्चे सही पाए गए हैं। पीर तक नामजदगियां वापस ली जा सकती हैं। रियासत में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे जबकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। महाराष्ट्र में तकरीबन 9,10,00,000 राय दहिंदगान हैं। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं जमीर रजवी।
अक्टूबर के महीने में अशिया और खिदमात की मजमूई टैक्स वसूली में 9% इजाफा होकर ये 1.87 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई। ये इजाफा घरेलू फरोख्त और जीएसटी वसूली पर बेहतर तरीके से अमल दरामद की वजह से हुआ है। ये वसूली अभी तक की सबसे ज्यादा वसूली के बाद दूसरे नंबर पर है। मरकजी जीएसटी वसूली इस माह के दौरान 33,821 करोड़ रुपए, रियासती जीएसटी वसूली 41,864 करोड़ रुपए, मरबूत आईजीएसटी वसूली 99,111 करोड़ रुपए और महसूल की रकम 12,550 करोड़ रुपए रही। अक्टूबर 2023 में कुल वसूली 1.72 लाख करोड़ रुपए थी जबकि अक्टूबर 2024 में ये दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा वसूली रही। अप्रैल 2024 में सबसे ज्यादा वसूली 2.10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की थी। जीएसटी वसूली की इस रकम से भारतीय मईशत के सेहतमंद रुझान का पता चलता है। इस इजाफे की वजह घरेलू खपत और दरामदाती सरगर्मियां हैं। माहिरीन का कहना है कि जीएसटी वसूली में यह इजाफा त्योहारों के मौके पर अशिया की फरोख्त और जीएसटी वसूली पर बेहतर अमल दरामद की वजह से हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी ने कल शाम मुहूर्त ट्रेडिंग की। इस तरह संवत 2081 का आगाज हो गया है। बीएसई अदद इशारिये में 335 पॉइंट्स या 0.42% का इजाफा हुआ और ये 79,724 पर बंद हुआ, जबकि एनएससी के अदद इशारिये निफ्टी में 99 पॉइंट्स या 0.41% का इजाफा हुआ और ये 24,304 पर बंद हुआ। कारोबार से पहले का सेशन शाम 5:45 पर शुरू हुआ और शाम 6 बजे खत्म हुआ, जबकि मामूल का कारोबार शाम 6 बजे से शाम 7 बजे तक जारी रहा। दुनिया भर में गुजराती बिरादरी आज अपना नया साल मना रही है। गुजरात में हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत के कार्तिक महीने के पहले दिन नया साल मनाया जाता है। गुजराती नया साल, जो बेस्तु वर्ष के नाम से भी जाना जाता है, आज रियासत भर में रिवायती जोशोखरोश के साथ मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
गुजरात में हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत के कार्तिक महीने के पहले दिन नया साल मनाया जाता है। बेस्तु वर्ष के नाम से मशहूर गुजराती नए साल के मौके पर अहम मंदिरों में अकीदतमंदों की बड़ी तादाद जमा होती है और लोग भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं और बेस्तु वर्ष के जिम्मन में मेहमानों के इस्तकबाल के लिए दाखिली दरवाजों को रंगोली से सजाया जाता है। ताजिर और कारोबारी घराने अपने तिजारती मकामात पर पूजा करते हैं और अपनी दुकानों को 5 दिनों के लिए बंद रखते हैं। लोग अपने अतराफ करीबी अफराद के घर जाकर नूतन वर्ष अभिनंदन कहकर नए साल की मुबारकबाद देते हैं। इस दौरान एक दूसरे को मिठाइयां भी पेश की जाती हैं। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं जमीर रजवी।
उत्तर प्रदेश में पूरी रियासत में मजहबी जोशो खरोश के साथ गोवर्धन पूजा की जा रही है। खासकर मथुरा वृंदावन के इलाके में, जहां भगवान कृष्ण के अकीदतमंद बड़ी तादाद में जमा हुए हैं। एक रिपोर्ट।
गैर मुल्की अफराद, मकामी लोगों के साथ साथ सयाह और पूरे मुल्क से आने वाले अकीदतमंदों ने मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण के मुख्तलिफ मंदिरों में पूजा अर्चना की और मुकद्दस गोवर्धन की परिक्रमा की। अकीदतमंद भगवान को 56 भोग चढ़ा रहे हैं और खाने का ढेर लगा रहे हैं, जिसे अन्नकूट कहा जाता है। इस मौके पर लोग अपनी गाय को भी सजा रहे हैं और उसकी पूजा कर रहे हैं। कुछ मंदिरों में कल भी गोवर्धन पूजा की गई थी। द्वारकाधीश मंदिर में कल एक बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया था, जबकि बहुत से मंदिरों में आज गोवर्धन पूजा की जा रही है। कल बुंदेलखंड इलाके में मशहूर लठमार दिवाली भी मनाई गई। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं आसिया मेमुना।
ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। کھیل کود اور نوجوانوں کے امور کے وزیر منسوخ مانڈویا نے نوجوانوں سے باوقار نوجوانوں کے قومی انعامات 2022-23 کے لیے درخواستیں پیش کرنے کی اپیل کی ہے. یہ انعامات انفرادی زمرے میں 15 سال سے 29 سال کے نوجوانوں اور سماجی خدمات اور ترقی کے مختلف شعبوں میں تعاون دینے اور بہترین کام کرنے والی تنظیموں کو تفویض کیے جاتے ہیں. ان شعبوں میں صحت، انسانی حقوق کے فروغ، سرگرم شہری خدمات اور کمیونٹی خدمات شامل ہیں. یہ انعام انفرادی زمرے میں تمغے، سرٹیفکیٹ اور 1,00,000 روپے نقد پر مشتمل ہوتے ہیں، جبکہ تنظیموں کو 3,00,000 روپے کے نقد رقم بطور انعام دی جاتی ہے. جناب مانویہ نے زور دے کر کہا کہ یہ انعام محض ایک ستائش نہیں ہے بلکہ سبھی کی شمولیت والے اور ترقی پسند بھارت کے نوجوان قیادت کے پروان چڑھنے کا جشن ہے.
سرکار نے راشٹری یووا پورسکار 2022-23 ہیتو آویدن کی تاریخ 15 نومبر 2024 تک جاری کر دی ہے. میرا سبھی دیش کے یوواؤں کو آگرہ ہے جس میں کوئی اچھا ساماجک کاریہ کیا ہو، دیش کے یووا جگت میں کوئی وششٹ آپ کا یوگدان ہو تو آپ اوشیہ آویدن پتر دیجیے اور اس پورسکار کے ادھیکاری بنیے.
نوجوانوں کے قومی انعامات 2022-23 کے لیے وزارت داخلہ کے کامن ایوارڈ پورٹل پر درخواستیں طلب کی جا رہی ہیں. درخواستیں پیش کرنے کی آخری تاریخ 15 نومبر ہے. بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل میں آج شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. محکمہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگلے 2 دن میں کیرلا اور ماہے میں ہلکی سے درمیانی بارش ہو سکتی ہے. IMD کے مطابق اگلے 2 سے 3 دن میں شمال اور مشرقی بھارت میں کم سے کم درجہ حرارت اور کمی آنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے دلی NCR میں کل تک رات اور صبح کے اوقات میں دھواں اور دھند رہنے کی بھی پیشگوئی کی ہے. دہلی NCR خطے میں ہوا کا معیار خراب کے زمرے میں رہے گا. بھارت امریکہ مشترکہ خصوصی دستوں کی 15ویں مشقیں وجر پرہار آج امریکہ کے شہر اداہو میں اورکرڈ کمبیٹ تربیتی مرکز میں شروع ہوں گی. یہ مشقیں اس مہینے کی 22 تاریخ تک جاری رہیں گی. بھارتی بیڈمنٹن کھلاڑی مالویکا بنسوڑ اور آیوش شیٹی جرمنی کے سار بروکن میں جاری ہائی لو اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں. خواتین کے سنگلز کے کل کھیلے گئے کوارٹر فائنل میچ میں 6ویں درجے کی مالویکا بنسوڑ نے 4ویں درجے کی ویتنام کی گوئنین تھیلین کو شکست دی. سیمی فائنل میں آج مالویکا کا مقابلہ ڈنمارک کی جولی ڈیوال سے ہوگا. وہیں جیکوبسن نے بھارت کی 17 سالہ کھلاڑی رکشتا سری سنتوش راج کو ہرا دیا. مردوں کے سنگلز مقابلے میں 19 سالہ آیوش شیٹی نے فن لینڈ کے کیلے کالجونین کو شکست دی. فائنل میں آج آیوش شیٹی کا مقابلہ فرانس کے کرسٹو پوپوف سے ہوگا. یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں آسیہ میمونہ.
شکریہ اسلم. راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات نے دیوالی کے بعد دہلی میں آلودگی کی سطح بڑھنے کی خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ راشے سہارا کی شہ سرخی ہے، دہلی کا 1 UI 400 سے متجاوز، پابندی کے باوجود پٹاخے چھوڑے گئے. روزنامہ پرتاپ نے دہلی کے وزیر ماحولیات گوپال رائے کو کی جانب سے دہلی میں بڑھتی فضائی آلودگی سے نمٹنے کے لیے 200 موبائل اینٹی اسموگ گن کو تعینات کرنے کی خبر کو صفحہ اول پر شائع کیا ہے. روزنامہ ملاپ نے وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے ہریانہ، مدھیہ پردیش اور کرناٹک کے یوم تاسیس کے موقع پر مبارکباد دینے کی خبر کو نمایاں طور پر پیش کیا ہے. روزنامہ انقلاب نے وزیر اعظم مودی کی اقتصادی مشاورتی کونسل کے چیئرمین وویک دیب رائے کے انتقال کی خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے. وزیر اعظم نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا.
اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے تہواروں کے دنوں میں مسافروں کی سہولتوں اور سفر سے متعلق انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے نئی دلی ریلوے اسٹیشن کا دورہ کیا. جھارکھنڈ اسمبلی انتخابات کے لیے داخل کی گئی نامزدگیاں واپس لینے کے بعد اب کل 1211 امیدوار میدان میں رہ گئے ہیں. اکتوبر کے مہینے میں GST کی وصولی ابھی تک کی سب سے زیادہ وصولی کے بعد دوسرے نمبر پر رہی. یہ وصولی 1.87 لاکھ کروڑ روپے رہی. حکومت نے باوقار نیشنل یوتھ ایوارڈز 2022-23 کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں. دنیا بھر میں گجراتی برادری آج اپنا نیا سال منا رہی ہے اور بھارتی بیڈمنٹن کھلاڑی مالویکا بنسوڑ اور آیوش شیٹی جرمنی میں ہائی لو اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے سیمی فائنلز میں پہنچ گئے ہیں. اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا.